एक दृष्टांत में बात कही गई है। एक बार एक हंस उड़ता हुआ जा रहा था, तब तक रात हो गई, शाम हो गई, तो एक पेड़ पर उतरा, एक पेड़ पर बैठने के लिए उतरा हंस। वो पेड़ पर केवल, उस पेड़ पर केवल उल्लू रहते थे जिनको दिन में दिखाई नहीं पड़ता, रात में थोड़ा थोड़ा दिखाई पड़ता है, दिन में बिल्कुल नहीं। तो हंस जब उतरा वृक्ष के ऊपर तो पूछे, हु आर यू? सारे उल्लू पूछे, तू कौन हो, कौन हो? तो कहा कि हंस, मैं हंस हूं। तो हंस किस चिड़िया का नाम है? हंस किस चिड़िया का नाम है? अब वो बेचारा क्या बतावे, हंस तो था तो किस चिड़िया का नाम है? तो ठीक है, कहां से आ रहे हो और यहां क्यों आए? मैं आ रहा था उड़ करके, और तब तक अंधकार, सूर्य अस्त हो गया। सूर्य किस चिड़िया का नाम है? वो जानते थे कि दुनिया में जो कुछ भी है चिड़िया ही होगा। सूर्य किस चिड़िया का नाम है? तो भाई चिड़िया नहीं है वो, सूर्य एक बहुत प्रकाशशील वस्तु है, आकाश में रहते हैं तो आलोक रहता है, प्रकाश रहता है। क्या आलोक रहता है? प्रकाश क्या चीज है? प्रकाश किसको कहते हैं? अब वो हंस क्या बताए प्रकाश, जिस कारण सबको देखने की शक्ति मिलती है, प्रकाश से आंखें काम करने लगती है, उसको प्रकाश कहते हैं, और सूर्य उस प्रकाश का स्रोत है। कब प्रकाश होता है? अब क्या बताया जाए कब प्रकाश होता है? जब प्रकाश होता है उस समय तो उनको दिखाई बंद हो जाता है। तब चौल पूछे, तब तुम आए क्यों? तो अंधकार छा गया, अब रास्ता नहीं सोचता, तो मैं आज रात को विश्राम करना चाहता हूं यहां पर, दिखाई नहीं पड़ रहा है। हम लोगों को तो इसी समय दिखाई पड़ता है, इसके पहले तो कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था। वो कहते अब सब ताली बजाने लगे, कैसा बेवकूफ आया है, कैसा ये हरे कृष्ण कर रहा है, तिलक किया है, अरे ईश्वर तो निराकार है, इस तरह से ताली पीटते, ये दिमाग भ्रष्ट है, ये अरे कुछ नहीं करने, जो मन में खाने का हो खाओ, ये क्या रिस्ट्रिक्शन है, प्याज मत खाओ, लहसुन मत खाओ, इस तरह से बोलते हैं डायरेक्ट, जीवन को बिल्कुल बेकाम बना देंगे लोग। खाना पर रिस्ट्रिक्शन क्यों डालते हैं? जिसका मन जो हो खाने दो। तो वो इस तरह से कहते हैं, अंधकार क्या चीज है, अंधकार किस चिड़िया का नाम है? जिसमें आंखों की क्षमता नहीं रहती है देखने की, अंधकार है चाहे। कब अंधकार चालू हुआ? तो अभी लगभग 45 मिनट पहले, एक घंटा पहले चलो। इसको हटाओ यहां से, उल्टा बोल रहा है, इसको हटाओ, हटाओ इसको। लेकिन उल्लुओं में शक्ति नहीं थी कि राजहंस को हटा सके। अब रात भर बेचारे वो भी परेशान रहे सारे उल्लू, क्योंकि सूरज को देखे नहीं है, वापस में कॉन्फ्रेंस करते रहे करते रहे, सूरज नाम की कोई चीज नहीं है, सारे उल्लू अब वोट देने लगे, ताली बजा रहे थे, ये सूरज का उपासक आया, सूरज भक्त आया, वहम है, सूरज कोई चीज नहीं है, सब चीज निराकार, क्योंकि अंधकार में सब चीज निराकार रहता है, घना अंधकार हो कुछ न दिखाई पड़े तो निराकार है ही, घर भी निराकार, कार भी निराकार, रोड भी निराकार, अंधकार में तो सब निराकार। तो इसी तरह से जो अज्ञान में है वास्तव में, उनके लिए ईश्वर भी निराकार, और तो बात छोड़ ही दीजिए, सब कुछ ज्ञान है ही नहीं, अंधकार छाया हुआ है। जिन्होंने कभी भागवत सुना नहीं, गीता जिन्होंने देखा नहीं, सुना नहीं गुरुजनों से, वे कहां से भगवान के सुंदर अंगों की कल्पना कर पाएंगे, सोच भी नहीं पाएंगे। भगवान सबसे सुंदर व्यक्ति हैं, सबसे विद्वान हैं, परम ऐश्वर्यवान हैं, परम धनी हैं, और परम भक्तवत्सल हैं, अपने भक्तों से स्नेह करते हैं, वे अर्जुन का रथ हाँकते हैं, जब गिरिराज गोवर्धन उठाए थे, कालिये के फण पर नृत्य किए थे, दवानल पिए थे, ये सब बातें कहाँ से जान पाएंगे जब तक सुनेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं। और बस पढ़े नहीं सुने नहीं, बस कोई ना कोई मत मतांतर चला करके और ये सब संसार को ठग रहे हैं। ये श्रीमद् भागवत है जिसमें भक्तों के उद्गार दिए गए, जिन्होंने भगवान को आंखों से देखा है, देखा ही नहीं उनके साथ संबंध स्थापित किया है, उनके साथ खेला है, खाया है, युद्ध किया है उनके साथ, और कई तरह से उनके साथ रहे हैं, वे लोग बोलते हैं ईश्वर के विषय में, भगवान के विषय में वो प्रमाणिक। तो ईश्वर कैसे हैं? एक बार प्रभुपाद जी से पूछा एक व्यक्ति, तो स्वामी जी आप भगवान को मानते हैं, तो भगवान कौन है थोड़े में बताइए। तो प्रभुपाद जी कहे, बेणुम कोणम तमरबिंद दलायताक्ष बरहा वतंस मसितम बुध सुंदरांगम कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम गोविंद माधि पुरुषम तमाम। भगवान ने कहा, प्रभुपाद जी ने कहा कि ईश्वर बांसुरी बजाता है, बेणुम कोणम, उसकी आंखें कमल के समान सुंदर है, ब्रह्म संहिता में कहा गया, जो करोड़ों कामदेव से भी अधिक सुंदर है और बादल के समान सांवला शरीर है, ये है ईश्वर का वर्ण। वो व्यक्ति कहता है, ये तो ब्रह्म संहिता में लिखा गया है ना, ब्रह्म संहिता में लिखा गया तो जिन्होंने देखा है उन्होंने कहा है ना, ग्रंथ में कहे हैं उसी के अनुसार हम बोलेंगे ना। ब्रह्मा जी ने देखा भगवान कृष्ण को, तो वे उनके अंगों का वर्णन कर रहे हैं, तो आप तो ग्रंथ की बात कर रहे हैं। तो प्रभुपाद जी क्या, प्रभुपाद जी कहते, तब तुम्हारे दिमाग का कचड़ा कहे, ग्रंथ से नहीं कहे तो और किससे कहे। एक व्यक्ति हैदराबाद में बहस करने लगा, बार बार प्रभुपाद जी गीता को कोट कर रहे थे, गीता से उदाहरण दे रहे थे, तो वो कहा कि अब गीता से इतना क्यों बोल रहे हैं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं, क्या न्यूज़पेपर से बोलूं गीता से नहीं बोलूं तो न्यूज़पेपर से बोलूं, और गीता से बोल रहा हूं तो इसमें तुम क्या असंगति देखते हो, बोलो बोलो कोई श्लोक बोलो जिसमें भगवान गलत बात बोले हैं, बोलो। प्रभुपाद जी लगे डांटने, नहीं तुम अभी बोलो, गीता में कौन गड़बड़ी तुम पाए, किस श्लोक में क्या गड़बड़ बात हुई है। फिर प्रभुपाद जी कहते, आचार्य शंकर इसको माने, आदि शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, सभी लोग इसको माने हैं, तुम गीता से कोट करने पर क्यों उग रहे हो। बहुत डांट रहे, तो वो कैसी भी है उसमें प्रभुपाद जी बोले, गीता से न बोला जाए तो किससे बोला जाएगा। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं सबका प्रभाव हूं, मैं सबको जन्म देता हूं, सबका मालिक हूं, सबको जिला रहा हूं, खिला रहा हूं, जो मुझसे प्रेम करते हैं परम भाग्यवान है, वे महात्मा है, ये है वो। गीता जो कहता है वही मान्य है ना। तो इस प्रकार शास्त्रों के अनुसार चलना चाहिए, इसीलिए शास्त्र को सुनने की परंपरा है, पहले तो सुने, तो जिसमें भगवान के वचन, भगवान की लीलाएं सब दी गई। हम लोगों का बहुत बड़ा भाग्य है कि हम लोग इस परंपरा में हैं, ब्रह्मा जी से आने वाली परंपरा में, जिसमें नारद जी हैं, जिसमें मध्वाचार्य है और जिसमें भगवान चैतन्य महाप्रभु हैं। हम लोग ऐसे अंधविश्वासी नहीं है। तो वो हैदराबाद में व्यक्ति बोल रहा है, हम अंग्रेजी में बात हो रही है, वो कहता है कि हम कैसे ब्लाइंडली आपकी बात मान ले। प्रभुपाद जी को कहा, व्हाई आई शुड एक्सेप्ट योर स्टेटमेंट ब्लाइंडली, वो कहता है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं, इफ यू कैन नॉट एक्सेप्ट ब्लाइंडली, यू शुड ऑल्सो नॉट रिजेक्ट ब्लाइंडली। ब्लाइंडली रिजेक्ट मत करो, आंख खोल करके देखो, और मानने लायक बात हो तो मानो, नहीं तो नहीं मानो। लेकिन ब्लाइंडली हम नहीं मानते हैं कृष्ण को, अरे अंधा कहीं के, आंख बंद किए किए और मानो नहीं मानो ये क्या करते हो? वो कहा कि हम ब्लाइंडली नहीं मान सकते आपकी बात। प्रभुपाद जी कहते ब्लाइंडली रिजेक्ट भी नहीं कर सकते हो। है आजकल ये धारणा हो हम ब्लाइंड, हम अंधविश्वास नहीं करते हैं, अंधविश्वास नहीं करते हैं, तो अंध रिजेक्ट कर सकते हो। आंख बंद करके बस कह देना ये चीज है वो चीज है। भगवत गीता इसी संसार में है और प्रभुपाद जी का भाष्य जिसे भगवत गीता है जिटीज कहते हैं वो इसी संसार में है। और फिर भी लोग दुख से दग्ध है, भगवान के बारे में ज्ञान नहीं है, ये आश्चर्य की बात है। इस कुरुक्षेत्र में आज से 5000 वर्ष पहले गीता का प्रवचन किया भगवान ने, उस पर अनेक भाष्य है, अनेक टीकाएं हैं वैष्णवों की, और इसके साथ साथ अन्य लोगों ने भी बहुत सी टीकाएं लिखी है। तो गीता की टीका लिखे हैं लेकिन गीता की बात नहीं कहते हैं, अपनी बात कहते हैं, उसको गीता से पुष्ट करना चाहते हैं। लेकिन बात यह है कि गीता की बात कह करके उसके अनुसार अपनी बात को पुष्ट करना चाहिए। गीता स्टैंडर्ड है, ये नहीं कि हम स्टैंडर्ड हो गए और गीता का अर्थ ऐसे कर दिए तोड़ मड़ोल करके। एक टीकाकार लिखा है से गीता कचड़ा, मैं पढ़ा उसको, मनमना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु। वो लिखता है ये कृष्ण नामक व्यक्ति गीता का उपदेश किए तो वास्तव में कोई पुरुष नहीं है। मनमना भव का अर्थ है कि जो गीता कह रहा है बांच रहा है वो अपने लिए कहेगा, मनमना भव मुझ में मन लगाओ। मध्याजी माम नमस्कुरु मेरा भक्त बनो, मुझ में मन लगाओ, मेरा भक्त बनो, मुझे प्रणाम करो, मेरी पूजा करो। इसका असली अर्थ ये है जो गीता पढ़ेगा वो मैं कहकर बोलेगा, मन मना वो मुझ में मन लगाओ। तो तुम्हें अब ये कृष्ण नामक व्यक्ति में मन लगाने की मत सोचो, अब तुम गीता बोल रहे हो तो तुम उसके वाच्य हो, अब वही भगवान हो गया। तो श्री भगवान वाचक कहा जाए तो इसको कहा जाए कि तुम ही वहां कुरुक्षेत्र में प्रवचन कर रहे थे, श्री भगवान वाचक लो पर कही। ये बात लिखने में शर्म भी नहीं लगती। मन मना भव का अर्थ क्या है? मन मतलब भगवान कृष्ण, मन मत शब्द है, मत मना मन मना मुझ में मन लगा, तो उसका इमीडिएट अर्थ है कि अर्जुन के रथ पर बैठे हुए श्री कृष्ण जो इस गीता को बोल रहे उनमें मन लगाना। यदि मान लीजिए हम किसी व्यक्ति से कहे कि हमको एक गिलास पानी लाओ, तो वो व्यक्ति एज इट इज अगर हमारी बात को कहेगा तो कहेगा कि ले जाओ स्वामी जी को पानी दे दो एक गिलास, ये असली अर्थ हुआ। ये नहीं कहेगा कि एक गिलास पानी मुझको लाओ, ये परंपरा बताएगा। अगर हम पानी मांग रहे हैं, हम इस वाक्य के ओरिजिनल वक्ता हैं, हमको जरूरत है पानी की, तो कोई जा करके कहे ऐसे ही झूठ मूठ के मुझको पानी दो, फिर उस बात को सुनकर दूसरा कहे मुझको पानी दो, क्योंकि वो पानी मांग रहे हैं। तो पानी कौन मांग रहा है उसको देना है ना। कर मेरा भक्त बनो, मेरी पूजा करो, कुरुक्षेत्र में भगवान बोल रहे हैं मुझे प्रणाम करो, मुझ में मन लगाओ, तो फिर दूसरे दुष्ट में क्यों मन लगाया जाता है कि नहीं? जब गीता पढ़ते नहीं, कह दो कि गीता नहीं पढ़ते हैं हम, गीता भी पढ़ते हो और दूसरे के भक्त बनते हो, देखिए एक बार वो गीता, इसका मतलब है कि भगवान का विरोध कर रहा है, वो मान नहीं रहा है गीता को। और गीता मानने वाला व्यक्ति तो कृष्ण का भक्त बनेगा, जहां भगवान साफ कहते हैं मुझ में मन लगाओ, मेरा भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो, ऐसा करने पर निश्चित ही तुम मुझे प्राप्त करोगे, इसमें कोई संदेह नहीं। ये श्लोक पढ़ करके लोग कहते हैं हाँ किसी को भी मानो, किसी की भी पूजा करो, किसी को भी आदर करो, नमस्कार करो, सब एक ही जगह जाएंगे। ऐसा करने वाला चार काम वो भगवान कृष्ण के पास जाता है, अगर कृष्ण को प्रणाम करे, कृष्ण में मन लगावे, कृष्ण की पूजा करे, तो कृष्ण के पास जाता है, भगवान ये बात कह रहे हैं। और इसका अर्थ कुछ लोग करते हैं, तुम ये सब कुछ भी करो हमारे पास चले आओगे, मतलब भगवान के पास जाओ। इतना इतना संसार में कुरफात है अध्यात्म के नाम पर, और सब चीज की परिभाषा है ठीक ठीक, भगवान की कोई परिभाषा नहीं संसार में। जिसके मन में जो आ रहा है वही मान रहा है, वही मान रहा है। पर वास्तव में जो विद्वान व्यक्ति हैं, समझदार हैं, जानते हैं कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण भगवान है। इसको सभी लोगों ने, विद्वानों ने माना है, इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। मूर्ख लोग केवल विवाद करते हैं। तो भीष्म पितामह इस तरह से भगवान की स्तुति कर रहे हैं, बार बार जो कह रहे हैं कि वे हमारे गति हो, उनमें हमारी प्रीति हो, अर्जुन के सखा में हमारी प्रीति हो, जो हमको मारने के लिए आ रहे थे, जो हमारी बात को रख दिए, अपनी बात छोड़ दिए, अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ दिए, जो भक्त से इतना स्नेह करते हैं, अर्जुन की रक्षा में व्यग्र हैं, ये सब बातें सुन करके ऐसा आश्वासन मिलता है भगवान हमसे भी प्रेम करेंगे, यदि हम उनसे प्रेम करते हैं तो प्रेम करेंगे। और केवल प्रेम करने की बात नहीं है, संसार में लोग दुख से घिरे हुए हैं, भगवान बार बार इस बात को कहते हैं कि ऐसा करोगे तो तुम सब दुख से मुक्त हो जाओगे, ऐसा स्पष्ट बोलते हैं। दुख से मुक्त होना कौन नहीं चाहता। तो गीता के अनुसार, भागवत के अनुसार भगवान की भक्ति करनी चाहिए, और ऐसा नहीं समझ लेना चाहिए कि इस्कान वाले केवल हरे कृष्ण ही करते हैं, कीर्तन करते हैं। इस्कान में जो फिलॉसफी है वो बिल्कुल पूर्ण है, सत्य दर्शन जिसको कहा जाता है, सत्य ज्ञान प्रभुपाद जी की कृपा से आ रहा है। ऐसा कभी कभी लोग कहते हैं इस्कान वाले तो बस वही ढोलक बजाते हैं, नाचते हैं, केवल ऐसी बात नहीं है। इस्कान के पास जो साहित्य है ऐसा किसी संस्था के पास नहीं है। आप किसी मंदिर में जाइए तो भगवान की व्याख्या करने वाले साहित्य भरे पड़े हैं। इस्कान के किसी मंदिर में जाइए तो एक डिपार्ट ही है बीबीटी, और जगह जाइए ठीक है पूजा पाठ कीजिए आइए, ज्ञान कुछ नहीं होता, कुछ पढ़ने के लिए है ही नहीं। लेकिन सैकड़ों किताबें हैं जो भगवान के बारे में इंफॉर्मेशन देती हैं। कोई जाए तो दर्शन करे, फिर उनको सुने या उनको लेकर के पढ़े, उससे ज्ञान होता है। मंदिर इसके लिए बनाया जाता है जहां भगवान के बारे में ज्ञान हो, जहां कथाएं हो और लोग ग्रंथ पढ़े समझे। तो इस्कान के पास ही ऐसा पूर्ण वैज्ञानिक ढंग से सब कुछ है, भगवान का दर्शन है, भगवान की सेवा है, और भगवान का वर्णन करने वाला प्रचुर साहित्य है। ऐसा साहित्य नहीं है कि व्याख्या करे कि भगवान निराकार है, ये है, ये इस फालतू चीज नहीं है। देख रहे हैं भगवत गीता है, श्रीमद् भागवतम है, चैतन्य चरितामृत है, ईशोपनिषद है, भक्ति रसामृत सिंधु है, सब बिल्कुल पॉजिटिव ज्ञान देने वाले ग्रंथ हैं। प्रभुपाद जी ने इस दृष्टि को दिया है, मंदिर में जाए तो कुछ साहित्य लेगा, कुछ ग्रंथ लेगा, दर्शन किया, इसके बाद जाकर घर पर पढ़ेगा, सुनेगा, अपने बच्चों को देगा पढ़ने के लिए, तो ठीक ठीक ज्ञान होता रहेगा। इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि इस इस्कान संस्था को भी स्वीकार कीजिए, करना चाहिए, इससे सच्चा ज्ञान मिलेगा, नहीं तो आदमी ऐसे ही भ्रम में रह जाएगा। स्वीकार करना चाहिए। हम लोगों को ये सब परंपरा से चीजें मिली हैं। आज भीष्म पितामह की मैं कथा कह रहा हूं, देखिए क्या परंपरा है। यही कुरुक्षेत्र है और यहीं पर भीष्म पितामह के साथ भगवान ने वो लीलाएं किया, युद्ध किया, उपदेश किया, और उसी भूमि में हम भीष्म पितामह की चर्चा कर रहे हैं, भगवान कृष्ण की चर्चा कर रहे हैं। इसको कहते हैं रियल परंपरा, इसको कहते हैं रियल प्रवचन। भीष्म पितामह क्या क्या भगवान के बारे में बोल रहे हैं, हम वही प्रयास कर रहे हैं कि उसी बात को हमें रखे, उसको सुनने के बाद भक्तों का उत्साह बहुत बढ़ता है, और जो भी भक्त नहीं है उन्हें भक्त बनने की एक लालसा उदित होती है कि हम भी भीष्म पितामह जैसा भगवान कृष्ण से प्रेम करें। इसीलिए बार बार आग्रह किया जाता है पढ़िए पढ़िए पढ़िए, सुनिए सुनिए, और अपने घरों में ये साहित्य रखना चाहिए, पढ़ना चाहिए। कभी कदाचित मान लीजिए कोई व्यक्ति नहीं पढ़ा तो कभी बच्चा पढ़ेगा, पत्नी पढ़ेगी, कोई ना कोई पढ़ेगा, पढ़ करके दूसरों को सुनाएगा। इस साहित्य खास करके श्रीमद् भागवतम और भगवद गीता, और उसमें भी अगर भागवत तो बड़ा ग्रंथ है, उतना पढ़ने का समय न हो तो भगवद गीता 700 श्लोक का ग्रंथ कोई बहुत बड़ा नहीं है, और संसार का सर्वश्रेष्ठ ज्ञान ग्रंथ है यह, भगवान के बारे में पूर्ण ज्ञान देता है। जीवन के साधारण आचार विचार से खान पान से लेकर के और परब्रह्म भगवान तक का इसमें वर्णन किया गया है। भगवान कृष्ण अपने बारे में वर्णन किए और भोजन का भी वर्णन किए, क्या खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, वस्त्र पहनना, प्रणाम करना, सब चीजों का वर्णन है।